الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں آیات نمبر 70 سے لے کر کے 76 کے بعد 76. تو ان کا پہلے تو ہم ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ معارف القرآن کے اندر حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے لیا ہے. ان کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ نقل کر دیا. بہت مشکل جو الفاظ تھے ان کو آسان اردو سے بس ریپلیس کر دیا، ورنہ یہ ترجمہ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے. اور اس کے بعد پھر خلاصہ تفسیر ہم پڑھتے ہیں، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے حضرت مفتی شفیع نے لیا ہے، جو کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت بھی تھے. پھر اس کے بعد معارف المسائل پڑھتے ہیں. تو یہ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جو قحط آیا جس کا کہ سب سے پہلا شکار تو مصر کا ملک ہی ہوا، اور اس کے بعد پھر مصر کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے. تو جہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد اور دیگر بھائی رہتے تھے فلسطین کے اندر، تو وہ جگہ بھی قحط سے متاثر ہوئی. یعنی اتنے بڑے ایریا کے اوپر قحط آیا. مصر اور فلسطین میں بہرحال فاصلہ تو ہے نا اچھا خاصا بڑا، گویا کہ شاید ہمارا جو ملک پاکستان ہے تو اس کا جو ہے وہ آدھا پاکستان کے قریب تو کم از کم اتنا ڈسٹنس ہوگا. تو اتنے بڑے علاقے کے اندر قحط آ گیا تھا. تو پھر وہاں سے جو ان کے بھائی تھے وہ غلہ لینے کے لیے آئے. جب ان کو پتا چلا کہ بھائی مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی کم قیمت کے اوپر غلہ دیا کرتا ہے، تو پچھلی کلاس تک ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے ان بھائیوں سے کہا کہ بھائی تمہارا جو ایک اور بھائی ہے نا، جس کا جب میں نے تم سے کراس کوشچننگ وغیرہ کی تھی تمہارے خاندان تمہارے گھر بار کے بارے میں، تو تم نے بتایا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، تو نیکسٹ ٹائم جب تم آنا نا تم اس بھائی کو لے کر کے آنا، اور اگر تم اس کو لے کے نہیں آؤ گے نا تو پھر نا میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں الٹا یہ سمجھوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اپنے ایک اضافی بھائی کا بتا کر کے، تاکہ تم مجھ سے زیادہ غلہ لے لو، حالانکہ تمہارا کوئی اضافی بھائی تھا ہی نہیں، اگر ہوتا تو تم لے کر کے آتے. تو اس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ کچھ وہ بھی دیا، انسینٹیو بھی دیا کہ اگر تم بھائی کو لے کر کے آؤ گے تو میں پورا ایکسٹرا اونٹ تمہیں غلے کا دوں گا اس کے لیے، لیکن اگر تم نہیں لے کر کے آؤ گے نا تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اور یعنی دھمکی بھی ایک طرح کی دے دی ان کو. تو پھر یہ لوگ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ بھائی تم اس کے ساتھ کیا کرو گے، وہی جیسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. तो इन्होंने कहा नहीं, हम उसका बड़ा ख्याल रखेंगे और हम तो इस वजह से है लेके जा रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के हवाले, ठीक है, अपने यानी बेटे बिन्यामीन को भी इनके साथ भेज तो दिया और ये भी बता दिया कि भाई थोड़ी तदबीर भी इख्तियार कर लेना कि कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए और तुम एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ दरवाजों में दाखिल होना। और ये मैं तुम्हें एक तदबीर बता रहा हूँ जो कि मेरे दिल में आई है, लेकिन ये जो तदबीर है ये अल्लाह के फैसले को टाल नहीं सकती, होगा तो वही जो अल्लाह का फैसला होगा। लेकिन तदबीर करना ये भी अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला चाहते हैं अपने बंदों से कि वो असबाब इख्तियार करें जिनमें से सबसे बड़ा सबब अल्लाह ने जो दिया है वो इंसान की अपनी अकल है, ठीक है। तो अकल जो है वो इस्तेमाल करने के लिए दी है, साइड पे लपेट के रख देने के लिए तो नहीं दी ना। तो अकल इस्तेमाल करो, तदबीर करो, उसके लिए जो है वो एफर्ट्स डालो, फिजिकल तुम्हारे पास जो कैपेबिलिटीज है वो इस्तेमाल करो, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है वो इस्तेमाल करो, उसके अलावा कोई रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास वो इस्तेमाल करो, मशीनरी इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करो जायज होना चाहिए और अकल के हिसाब से ठीक होना चाहिए। बाकी ये कि होगा तो वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। बहर आप तो ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं, नजर वजर के बारे में भी, काफी के भी नजर जो है वो हक होती है और इसके बारे में हदीसें वगैरह भी हमने पढ़ी। तो एक जो है वो बस एक पैराग्राफ जो है ना इस हदीस की नजर से गुजरा था जो कि हमारे हजरत पीर अब्दुल नक्शबंदी दामत बरकातहू की किताब में नजर के बारे में लिखा हुआ था। बल्कि नहीं, नजर के बारे में ये पैराग्राफ नहीं था क्योंकि नजर का भी एक सॉर्ट ऑफ मेटाफिजिकल रियलिटी है, तो जादू भी इसी किस्म की एक चीज है। तो ये जो पैराग्राफ था ना ये जादू और अमलियात वगैरह के असर से मुताल्लिक था, तो सोचा कि उस पैराग्राफ को आज आपको भी पढ़ के सुना देते हैं। तो हजरत ने ना एक बड़ी यानी बात लिखी, बल्कि एक्चुअली अपने बयान में फरमाई थी जिसको फिर बाद में किताब की शक्ल में ट्रांसक्राइब कर दिया गया और छाप दिया गया। तो फरमाया था कि हैरत की बात है कि तहज्जुद गुजार, नमाजी और परहेजगार लोग उन अमलियात करने वालों के फंदे में आ जाते हैं। अमलियात करने वाले जो कि हर वक्त ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर जादू हो गया होगा, तुम्हारे ऊपर जो है वो नजर हो गई होगी, तुम्हारे ऊपर फलाना असर हो गया होगा, ठीक है, टोना है, किसी आप में से किसी ने कहा था टोना हो गया होगा। टोना अलग चीज होती है, जादू अलग चीज होती है, वॉट एवर। तो हजरत फरमाते हैं कि हैरत की बात है कि तहज्जुद गुजार, नमाजी और परहेजगार लोग उनके फंदे में आ जाते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक नेक नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार आदमी फोन पर कहने लगे कि जी मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है ना, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, तहज्जुद गुजार भी है। तो वो कहने लगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो मैंने कहा खुदा का खौफ करो, एक इंसान इतना नेकोकारी की जिंदगी गुजारता हो, कुरान का हाफिज हो और शरीयत व सुन्नत का एहतमाम करने वाला बंदा हो, अगर उसके ऊपर अमलियात का असर होना है तो फिर पीछे क्या बचा, ठीक है, पीछे क्या बचा, यानी फिर रह क्या गया फिर उसके बाद, अगर ऐसे शख्स के ऊपर जो कि कुरान मजीद का हाफिज भी है, यानी जाहिर है हाफिज जो होते हैं वो उमूमी तौर पर कुरान मजीद का दौर करते रहते हैं, रोजाना जो है वो कम से कम एक पारा तो पढ़ते हैं, कुछ तो माशाल्लाह तीन तीन पारे पढ़ते हैं। जितना कुरान मजीद पढ़ने वाला, सीने में कुरान मजीद महफूज है, शरीयत और सुन्नत का एहतमाम करने वाला बंदा है, नेकुकारी की जिंदगी गुजारता है। अब ये कौन कह रहा है, ये हजरत कह रहे हैं जो कि उस शख्स के शेख हैं, राइट। शेख जो है ना वो किसी के सामने उसकी तारीफ करे तो पक्की बात होती है ना, बड़ा तारीफ कर रहा है वो, अपने मुंह से तो तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वाकई वो बंदा ऐसा था, लेकिन उसको ये गलत फहमी किसी वजह से लग गई कि उसके ऊपर जो है ना वो किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है ना, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया होगा इस तरह की बात, बीमार बीमार हो गया होगा, चला गया होगा किसी के पास, या खुद भी जो है हमारे यहाँ फ्री का मशवरा देने वाले तो लोग कम नहीं होते, तो किसी ने कह दिया अब तुम्हारे पर तो लगता है जादू का असर हो गया है। तो अब हजरत क्या कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के ऊपर अगर जादू का असर हो गया हो तो फिर बाकी क्या बचा, क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये अगर आप गेस करके बताएं तो ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ आपकी भी क्लास पार्टिसिपेशन हो जाए, ठीक है ना। ये फकीर आपको ये क्यों सुना रहा है कि अगर ऐसे नेक इंसान के ऊपर जिसकी कि शेख गवाही दे रहा है कि वो नेक है, उसके ऊपर भी अगर जादू का असर हो गया तो पीछे क्या बचा, और बाकी सयाहो सबाक भी यही है कि भाई नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। बहरहाल जब ने आपके जवाब से पहले याद जिसको दी आपको बता देता है कि मैं आपको ये वाकया इसलिए सुना रहा हूँ, हजरत की बात इसलिए सुना रहा हूँ कि भाई ये जो जादू टोने का असर और नजर का जो असर, नजर का असर चले वो तो सहाबी की, अब है हम जादू टोने की बात करें ठीक है ना, तो सहाबी को भी हो गया था ना नजर का असर, लेकिन इवन ऑल ऑफ दैट, चाहे नजर का असर हो चाहे जादू टोने का असर हो, ये जो चीजें होती हैं ना, ये नेकी का नेकोकारी, परहेजगारी और कुरान मजीद के तिलावत और कुरानी अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इनके साथ नहीं होती है ठीक है ना। जो शख्स इन चीजों का एहतमाम करता है ना, इहफज़िल्लाह यहफज़ का, नबी अलैहिस्सलाम सल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करो, यानी जिंदगी जो है वो नेकोकारी की गुजारो, परहेजगारी की गुजारो ना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर नजर, जादू टोने, इस किस्म की चीजें नहीं होंगी। अब उसके ऊपर हम चूंकि पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें ना, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस पढ़ ली हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता चली गई। नहीं, वो तो हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू हो गया था, और जो है सहाबी के ऊपर जो है वो नजर लग गई थी, और जो है हम फलाने शेख को जानते हैं जिनको के जो है वो जिनके ऊपर भी जादू हो गया है ठीक है ना, ये सारी चीजें फिर हमें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई याद रखें कि दोस थिंग्स आर एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन एक्सेप्शनल नहीं, दे आर एक्सेप्शंस ठीक है ना, उसको एक्सेप्शन कहा जाएगा, उसको रूल नहीं कहा जाएगा। रूल वही है एहफज़िल्लाह यहफज़ का, कि जो अल्लाह ताला के हुक्मों की हिफाजत करता है ना, उसको ये चीजें फिर असर नहीं करती है। जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है उसको ये चीजें फिर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसको ये चीजें नहीं लगती। तो फिर किसको जो है वो हर वक्त लगती रहती है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ड्रामे भी तो मौजूद है ना, कम नहीं है ऐसे लोग जिनका जो है ना वो ओढ़ना बिछोना ही इन्हीं चीजों के बारे में होता है। हर वक्त जो है ना वो जादू टोना, हर वक्त उनका अमलियात के आमिलों के साथ जो है ना बड़ा क्लोज कांटेक्ट रहता है, और हर वक्त ही उनके पास कुछ ना कुछ हुआ हुआ होता है उनके ऊपर ठीक है ना। कुछ भी हो जाए फौरन जो है ना वो ऑलमोस्ट पहला जो है ना वो जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, पहला दिमाग में यही ख्याल आता है किसी ने कुछ कर दिया है ठीक है। तो ये ऐसा इतना तमाशा नहीं है ठीक है ना। अगर ये आप इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं ना, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद यू ठीक है ना, समथिंग इज एक्चुअली रॉन्ग विद योर हेड समवेयर, आपके दिमाग के साथ कोई मसला है, कोई रसूली है, कोई इस किस्म की जो है ना वो कीड़ा है आपके दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से ना दैट्स ऑल नॉट नॉट ऑल यू थिंक अबाउट, दैट्स मेजोरिटी ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट ठीक है ना। तो स्टॉप स्टॉप डूइंग दिस बीएस ठीक है ना, स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप वेस्टिंग द होल वर्ल्ड्स टाइम ठीक है ना। अपने दिमाग के का इलाज करवाएं डॉक्टर के पास जाकर, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर, या तौबा करें अपने गुनाहों से, क्योंकि आपके ऊपर ये सब कुछ जो हो रहा है ना गुनाहों की वजह से हो रहा है, गुनाहों की वजह से हो रहा है। और जिसके अंदर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? झूठ और फरेब, झूठ और फरेब, जिसके अंदर के जो है ना वो मेजोरिटी इस वक्त मुबतला है। तो इस वजह से जो जादू जुन्नों के ऊपर हो रहे हैं, जुन्नों के ऊपर जो है ना वो इस किस्म के मेटाफिजिकल किस्म के मसले जो बन रहे हैं ना इतने ज्यादा आजकल, अब ये एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक रूल बनता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि दे आर नॉट फॉलोइंग अल्लाह कमांड्स, अल्लाह ताला के हुक्मों की जो है वो बिल्कुल कदर नहीं है, बेदरेग झूठ बोलते हैं, बेदरेग झूठ बोलते हैं, समझते हैं ना इस लफ्ज का मतलब क्या है? बेदरेग यानी बिल्कुल भी जो है ना वो यानी कोई फिक्र ही कोई नहीं झूठ बोलने से पहले ठीक। तो झूठ जो बोल रहा होता है अल्लाह ताला के हुक्म की, जो अल्लाह ताला का हक जो मार रहा होता है, सच बोलना अल्लाह का हक है, इतना जो है वो यानी धड़ल्ले के साथ जो है वो अल्लाह का हक जो मार रहा होता है, तो अल्लाह ताला क्यों हिफाजत फरमाएंगे उसकी फिर ठीक है ना। तो जो है ना ये आमिलों के बकवास खत्म करें और अपने गुनाहों को देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप समझते हैं सारी दुनिया जो है वो समझ रही है कि आप बड़े नेक हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो बुराई है ना और आपका झूठ जो है ना और आपका फरेब जो है ना, इवन दुनिया वालों को भी नजर आ रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता, तो ये आपका मसला है ठीक है। तो गुनाहों से तौबा करें, असल वजह जो हो रही है ना वो गुनाह ही हो रहे हैं। और जो बड़े शेख को अगर कोई जादू हो गया ना, उसको अपनी दलील मत बनाए कि उनको भी तो हुआ था, तो मैं भी तो बड़े शेख ही के जैसा हूं ना, मैं भी तो बड़े शेख जैसा हूं, या मैं भी नबी अलैहिस्सलाम जैसी हूं, या मैं भी सहाबिया जैसी हूं, अपने आप को ये कि फला वला तुजक्कू अनफुसकुम, अपने आप को इस तरह से तजकिया करके ना उस दर्जे के ऊपर मत पहुंचाएं कि जी मैं भी एक्सेप्शन हूँ, इस वजह से एज एन एक्सेप्शन मेरे ऊपर भी जादू होता रहता है हर वक्त, मेरे ऊपर भी जो है ना वो हर वक्त नजर लगती रहती है, मेरे ऊपर भी जादू होता रहता है, मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है ना लोग मुझसे जो है ना वो खार खाए हुए हैं और मुझसे जो है ना वो जले हुए हैं और मुझसे हसद में मुबतला हैं, तो हर वक्त मेरे ऊपर जादू करते रहते हैं। ठीक है ना, ये BS जो है ना यानी बकवास है सारी की सारी, इसको खत्म करें आप। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ एंड स्टॉप वेस्टिंग अदर पीपल्स लाइफ। समझ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू में तर्जुमा करके बताऊं, दूसरों का वक्त जाया करना बंद करें। ठीक है, और गुनाहों का माने अपने गुनाह को, और आईना देखें, ये जो हम बयानात कर रहे होते हैं, जो क्लासेस के अंदर ये तफसीर पढ़ाई जा रही है, इसका मकसद आईना दिखाना है आपको, जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर इजाफा करना नहीं है, आपको किस्से कहानियों के जो है ना वो नॉलेज देना कि हाँ ये किस्सा हुआ था और वो कहानी हुई थी और उसके बाद ये वाला प्लॉट हुआ था और उसके बाद ये प्लॉट हुआ था, इसलिए नहीं बैठ करके आपको ये तफसीर की क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको आईना दिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं कि इसके अंदर अपनी सूरत देखो, अपने अमाल देखो, अपनी हरकतें देखो और अपनी इसलाह करो, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको ये तफसीर। ठीक है, तो इसको गौर से सुने और इसके अंदर अपना चेहरा देखें, अपने दिल के दाग देखें कि क्या क्या मैंने जो है वो तमाशे मचाए हुए अपनी जिंदगी के अंदर, और इसी के जरिए से अपनी इसलाह करें, इससे पहले कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के सामने जलील और रुसवा करके आपकी इसलाह किसी तरीके से करवाए या मरने के बाद फिर इसलाह करवाए। ठीक है, तो यही जो 45 मिनट्स होते हैं ना, इसी को अपनी इसलाह के लिए इस्तेमाल कर। तो ये वाक्य आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फलम्मा जहाज़हुम बेजहाज़ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ, कि फिर जब तैयार कर दिया उनके वास्ते असबाब, उनका वो जो उनका तोशा था, सामान था, लगेज था, तो वो जो है ना उनके उनका सारा का सारा जब बादशाह के यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उस वक्त जो है वो ऑल इन ऑल बने हुए थे मिस्र के, तो उसके लिए बादशाह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना वो हकीकत में वो बादशाह नहीं थे, तो अजीज मिस्र बन तो चुके थे, तो उन्होंने उनके जो काम करने वाले थे उन्होंने सब सब सामान वगैरह सेट कर दिया, तो क्या हुआ, जाला रख दिया, असिकाया था, सिकाया मतलब पानी पीने का प्याला, साकी कहते हैं ना पानी पिलाने वाला, तो सिकाया प्याला पानी पीने का, फिर रहले अखी उसके भाई के रहल के अंदर। ठीक है ना, रहल मतलब जो उसका सामान था, उसका जो लगेज था यानी बिन्यामीन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भाई का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये सिर्फ जो है ना वो सगे भाई के लिए इस्तेमाल हुआ, हालांकि बाकी भी भाई ही थे लेकिन वो सगे भाई नहीं थे, बाप शरीक भाई नहीं थे, वो सॉरी सॉरी वो माँ शरीक भाई नहीं थे, वो बाप शरीक भाई थे सिर्फ, और बिन्यामीन दोनों माँ बाप शरीक भाई थे, तो उनके रहल के अंदर जो है वो सिकाया रख दिया। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, उसके बाद सुम्मा एक ताखीर के साथ जो अगला कोई काम होता है ना, तो उसके लिए सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, एक अजान देने वाले हैं, अजान देना ये अजान तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में राइज हुई है और वो भी सहाबी के ख्वाब के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमाई, उमर फारूक ने तस्दीक फरमाई, फिर अजान, तो ये कौन सी अजान की बात हो रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की, तो नहीं ये वो अजान नहीं है बल्कि पुकारने वाला। ठीक है, तो पुकारने वाले ने जो है वो पुकारा, अय्यतुहल ईरू, ए काफले वालों, अल ईर पहले भी लफ्ज आया था काफले के लिए, तो ए काफले वालों, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम लोग तो चोर हो, सारिक हो, सारे के सारे सारिकून हो, चोरी करने वाले, कालू उन्होंने कहा यानी वो पीछे पलटे, और वह अकबलू अलैहिम, और उन्होंने कहा कि यानी अकबलू अलैहिम, मुतवज्जो हुए उसकी तरफ, पलटे उसकी तरफ पुकारने वाले मुअज्जिन की तरफ, मादा तफ्कदून, क्या चीज गुम हो गई है। ठीक है, गुम हो जाना जैसे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से हुदहुद गुम हो गया था, तो उसके लिए भी उन्होंने तफ्कदून का लफ्ज यानी तफ्कदू का लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो क्या चीज गुम हो गई है तुम्हारी, वॉट डू यू नॉट फाइंड, तफ्तिदून वॉट डू यू नॉट फाइंड, ठीक है, कालू नफ्तिदू सुवा अल मलिकी। तो पुकारने वालों ने, जो पीछे से एक टीम आ रही थी बादशाह की तरफ से, तो उन्होंने कहा नफ्तिदू, हम नहीं पाते सुवा अल मलिकी, बादशाह का सुवा। अब यहां पर सुवा का लफ्ज इस्तेमाल किया, पीछे सिकाया का लफ्ज इस्तेमाल किया। सुवा का लफ्ज भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सा का जो लफ्ज है ना, ये आपने सुना होगा कि ये पैमाने के लिए, पैमाना है सा, जैसे आजकल जो है वो लीटर होता है या किलोग्राम होता है, या तो ये एक प्याला, एक सर्टन जो है ना वो कैपेसिटी का प्याला होता था, सा का लफ्ज। तो बादशाह का नापने वाला प्याला, पहले था पानी पीने वाला प्याला, अब नापने वाला प्याला, तो गोया के दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करता था बादशाह। वलिमन जा बिही हिम्लु बईरिन, और जो कोई भी ले करके आएगा तो उसके लिए होगा हिम्लु बईर, लिमन उसके लिए होगा जो लेकर के आएगा उसको, हिम्लु बईर यानी एक ऊंट के बोझ के बराबर जो है ना वो गल्ला होगा। गल्ले का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हिम्लु बईरन, ऊंट के बराबर। वह अना बिही जमीन, और मैं उसका जामिन हूंगा, यानी मैं हूं उसका जामिन, यानी मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा ही होगा जैसे कि मैं कह रहा हूँ। ये मुअज्जिन ने, अजान दे यानी पुकारने वाले ने ये वाली बात कही। कालू तल्लाही, वो कहने लगे, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। कसम के लिए अरबी जुबान के अंदर वाव का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और ता का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, कभी वल्लाही होता है, कभी तल्लाही भी बोलते हैं। तो अल्लाह की कसम, लकद आलिम तुम, तहकीक के तुमको पता है, मा जे इना, हम नहीं आए, ले नुफसिदा फिल अर्दी, जमीन के अंदर फसाद करने के लिए, ठीक है ना, हम नहीं आए जमीन में फसाद करने के लिए। वमा कुन्ना सारकीन, और हम चोरी करने वाले नहीं हैं, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हीं ने तो हमें इतनी इज्जत दी थी पिछली दफा में, हमारे जब बाप का तुम्हें पता चला कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो इतना तुमने हमें अपने महल के अंदर ठहराया, और इस दफा भी तुमने हमें महल के अंदर ठहराया, तो यू नो वी आर यू नो डिसेंट पीपल, हम शरीफ लोग हैं, हम तो इसके लिए नहीं आए चोरी करने के लिए। अच्छा, लेनुफ़सिदा फिल अर्ध, फसाद करने के लिए नहीं आए। तो भाई फसाद तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कई क्लाशनकोफ के बर्ड्स तो नहीं मार दिए थे, या इन्होंने जो है वो तलवार से लोगों के सर तो नहीं उड़ा दिए थे, या इन्होंने जो है वो लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह तोड़ फोड़ करके और जला वला तो नहीं दिया था। फसाद तो हमारे नजदीक यही है, राइट, फसाद तो इसी को कहते हैं ना, तोड़ फोड़ कर देना, जलाओ घेराव कर देना, या जो है वो गोली मार देना, ठीक है, बम फाड़ देना, इसको हम फसाद समझते हैं। नहीं, चोरी करना ये भी फसाद है, जमीन के अंदर फसाद, जब किसी की मिल्कियत हो और उस मिल्कियत को उससे जो है ना वो नाजायज तरीके से छीन लिया जाए, ये भी जमीन में फसाद है। बजाहिर नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा जो है वो आग आग के शोले बुलंद होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन फसाद है, या फसाद की कम से कम इब्तिदा हो गई। अब ये चीज आगे जाएगी और ये फिर बढ़ती बढ़ती जो है ना फिर मेजर केओस की शक्ल भी इख्तियार कर लेगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे दीन ने निप द ईविल इन द बड, चोरी करने के ऊपर ही हाथ काट देने वाली सजा, हाथ काट देने, कितना शरीर किस्म का, एक भयानक किस्म का एक सजा नजर आती है ना भाई, हाथ काट देना। ओ, उसने खाली चोरी तो करी थी, 10 दिरहम से ज्यादा के ऊपर जो है वो, अच्छा 11 दिरहम के ऊपर हाथ काट दें, 11 दिरहम कोई इतनी बड़ी तो अमाउंट नहीं है कि जो है ना वो किसी इंसान का जो है वो हाथ ऐसे काट दिया जाए, उसके अंदर से कितना खून निकलेगा, क्या जो है वो दहशतनाक किस्म का वो मंजर होगा, उसको कितनी तकलीफ होगी, राइट। इतनी बड़ी सजा बजाहिर इतने छोटे जुर्म के ऊपर, क्योंकि इससे फसाद की का बीज पड़ जाता है, और जब उसका हाथ, अगर उसको इतनी सजा नहीं दी जाएगी ना, तो फिर अगला बंदा, उसको भी कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना कि हाँ भाई मैं भी जरा ले लूँ किसी से कोई चीज बगैर बताए बगैर पूछे, है ना, फिर वो भी ले लेगा, फिर उसके बाद कोई और भी ले लेगा, फिर उसके बाद कोई और भी ले लेगा, है ना, कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं। अल्लाह का खौफ होता तो फिर करते ही नहीं है वाला काम। लेकिन अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत जो है ना, ये हर एक के अंदर नहीं होती। और हमारा दीन जो है वो दीन दुनिया के अंदर ऑर्डर, ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो तो बस जिन्होंने पैदा कर ली वो बस सब ठीक है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उनकी बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो नहीं अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नेक काम करेंगे और अल्लाह के खौफ की वजह से बुराइयों से बचेंगे। उनको जो है ना फिर स्टिक दिखानी पड़ती है, उनको फिर डराना पड़ता है, उनको फिर धमकियां देनी पड़ती हैं, देखो तुम्हारा भी हाथ काटा जाएगा, तुम्हारा भी जो है ना वो सर कलम किया जाएगा अगर तुमने किसी इंसान की जान ले ली, किसी इंसान की प्रॉपर्टी चुरा ली, ठीक है ना, ताकि फसाद जो है ना वो दुनिया के अंदर नहीं फैले, ठीक है। तो इस वजह से चोरी करना जो है ना ये मामूली चीज नहीं है, खुसूसन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शरीफ लोग, शरीफ मर्द, शरीफ खवातीन, तो चोरी का तो इंशाल्लाह किसी का कोई इरादा वरादा नहीं होगा, लेकिन घरों के अंदर बच्चे, ठीक है ना, बच्चों की जो है ना वो कभी इस किस्म की आदत पड़ जाती है तो माँ बाप उसको इग्नोर ना करें, बेटा बच्चा था तो बच्चे तो करते ही हैं, नहीं क्या मतलब बच्चे करते हैं, ठीक है ना, टेक इट वेरी सीरियसली, उसको पिटाई मत करें अभी क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन छोड़े भी नहीं उसको, इग्नोर मत करें इस चीज को, ठीक है ना। हाँ, इनिशियली इग्नोर करें, जब आपका अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आप इग्नोर करें, लेकिन जब गुस्सा आपका ठंडा हो जाए ना उसके बाद उस बच्चे को जो है ना वो पहली दफा तो अच्छे से समझा दें कि बेटा ये जो है ना इंतहाई गलत चीज है, इसकी आपको इजाजत नहीं, ठीक है ना, और फिर उनको जरा सा बता भी दें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किया ना तो फिर हम खाली आपको जुबानी नहीं समझाएंगे बल्कि कोई आपको सजा मिलेगी, ठीक है। मारना पीटना तो बिल्कुल बहुत, यानी उसकी तो इजाजत भी नहीं है एक हद तक, और बिल्कुल आखिरी रिजोर्ट होता है, लेकिन सजा मिलने का मतलब सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, सजा मिलने का मतलब होता है कि आपकी कोई प्रिविलेज ले ली जाएगी, आपके खिलौना आपसे ले लिया जाएगा, आपका जो है ना वो फन टाइम आपसे ले लिया जाएगा, आपके दोस्तों के साथ जो आपको हम खेलने के लिए भेज देते हैं वो आपसे जो है ना वो खत्म कर दिया जाएगा, तो ये भी पनिशमेंट्स होती है, ठीक है। तो टेक इट वेरी सीरियसली अगर किसी बच्चे के अंदर आप ये गलती देखते हैं होते हुए। कालू फमा जजा उहु इन कुन तुम काजिबीन, तो उन लोगों ने कहा कि, यानी फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या क्या जजा है इसकी, यानी क्या रिकम उसकी जो है ना वो उसको सजा मिलेगी, यहाँ पे जजा का मतलब जो है वो इसके लिए सजा है क्योंकि गलत काम हुआ है, तो उसकी क्या सजा होगी, इन कुन तुम काजिबीन, अगर तुम लोग झूठे निकले, यानी तुम जो कह रहे हो ना कि हम तो चोर चोर नहीं है, हम तो फसाद के लिए नहीं आए थे, अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली तो तुम्हारी क्या सजा होगी। कालू, तो जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे उन लोगों ने जवाब दिया, जजाउहू इसकी सजा ये होगी कि मन वुजिदा फी राहली ही, कि जिसके रहल के अंदर यानी जिसके सामान के अंदर वो पाया गया, यानी वो सुआउल मलिकी पाया गया, हुआ जजाउहू वही उसकी सजा होगी, यानी वो शख्स जो है ना जिसके माल में पाया गया वो शख्स ही खुद ही, यानी उसका वजूद ही जो है ना वो सजा होगी, क्या मतलब सजा होगी, उसको रख लिया जाएगा, ठीक है, उसको उसके बदले रख लिया जाएगा, क्योंकि सजा और जजा जो होती है ना वो किसी फेल के बदले जो चीज मिलती है, कि बदले में जो चीज मिलती है ना उसी को कहा जाता है, तो गोया कि यही उसका बदला होगा इस बुरे फेल का। कजालिका नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरीके से हम जुल्म करने वालों को सजा देते हैं, जजा देते हैं, बदला देते हैं, ठीक है ना, ये हमारे शरीयत में, यानी जो हमारे वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं उनकी जो शरीयत है उसके अंदर यही होता है, उनके बाप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में यही था, बल्कि उलमा ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ही यही सजा थी, ठीक है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में सजा जो है वो उसकी शक्ल चेंज कर दी गई, ये हाथ काटने की सजा, ठीक है। फबदा बिअवियतिहिम क़ब्ल विआई अखीही, अच्छा फिर उसने शुरू किया, अब ये बदा, ये जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है ना, ये जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है ये यानी वाहिद का सीगा है, सिंगुलर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया के वहां पे मौजूद भी हो गए थे, वो भी पहुंच गए थे और उन्होंने इब्तिदा करी, किस चीज से इब्तिदा करी, उन लोगों के सामान से, यानी अपने जो बाप शरीक भाई थे उनके सामान से इब्तिदा करी सर्चिंग की, कबला विआई अखीही, अपने जो सगे भाई बिन्यामीन थे उनके सामान से पहले। विआ का जो लफ्ज है, विआ जो है वो यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हिफाजत के लिए कोई आप चीज रखते हैं ना, जैसे आपका जो जो भी कैरियर है, कोई केस है, कोई आपका संदूक है, उसके अंदर आप कोई हिफाजत के लिए कुछ रख देते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं ना, तो उसके लिए अरबी में विआ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और अवया जो है वो उसकी जमा है। तो उनके सामान से पहले देखना शुरू किया, फिर बाद में जो है ना वो अपने भाई के सामान में देखा। थुम्मा इस्तखरजहा मिन विआई अखीही, फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने निकाल लिया, इस्तखरजा ठीक है उसको, जिसको सुआउल मलिक को निकाल लिया अपने सगे भाई के सामान में से। कज़ालिका किदना ले यूसुफ, इस तरीके से हमने यूसुफ के लिए तदबीर करी, यूं दाव बनाया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दाव बताया हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये बा मुहावरा तर्जुमा है, लेकिन अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो ऐसा बनेगा कि हमने तदबीर करी यूसुफ के लिए। ठीक है, अब इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे किसका क्या मतलब है, हमने तदबीर करी या यूसुफ ने तदबीर करी। मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीन अल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह, मा नफी के लिए है ये, मा नाफिया, काना लियाखुज़ अखाहु, नहीं ले सकता था वो अपने भाई को, ठीक है यानी ये नहीं हो सकता था कि वो ले ले अपने भाई को, फी दीन अल मलिकी, बादशाह के दीन में। ठीक है, क्या मतलब, यहाँ पे दीन से मुराद जो है वो सिर्फ शरीयत है, या लीगल सिस्टम, जो मिस्र का लीगल सिस्टम था ना, जो कि काफिर मुल्क था और काफिर बादशाह था उसका, तो उस लीगल सिस्टम के तहत, तो दीन का लफ्ज जो है यहाँ पर लीगल सिस्टम के लिए आ रहा है। ठीक है, अब हमारा दीन लीगल सिस्टम नहीं होता, हमारा दीन तो रिवायात होती हैं या कुछ जो है वो आमाल वगैरह हो गए। लीगल सिस्टम तो हमने लिया है बर्तानिया से, लीगल सिस्टम तो हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, तो हम हमारा पे रिवाई, यहाँ से कुछ लिया, वहां से कुछ लिया, वहां से कुछ लिया, और सबको जो है ना वो मुशक्कल बना करके जो है ना वो हमने नारा लगा दिया इस्लाम का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इस्लाम तो भाई सब कुछ खुद ही प्रोवाइड करता है। खैर, तो दीन अल मलिक ही, बादशाह के मलिक के अंदर, के दीन के अंदर जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता था, इल्ला अन यशा अल्लाह, सिवाय इसके के अल्लाह ताला चाहता। तो अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने जो है वो यूसुफ को तदबीर से, अलैहिस्सलाम को तदबीर सिखा दी, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखने में कामयाब हो गए। नरफाउ दरजातिम मन नशाउ, इस तरह से हम दरजात बुलंद करते हैं जिसके हम चाहते हैं, मन नशाओ, जिसको भी हम चाहते हैं ना हम उसके दरजात बुलंद कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला उसके लिए उसूल के पाबंद नहीं है, अगरचे कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला कभी उसूल फॉलो भी करते हैं और कभी बगैर उसूलों के भी किसी को दरजात अता फरमा देते हैं। ठीक है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई अल्लाह ताला उसके पाबंद नहीं है, जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं। वफ़ौक़ कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, फ़ौक़ ऊपर, कुल्ले हर, ज़ी इल्म इल्म वाले, हर इल्म वाले के ऊपर एक अलीम है। ठीक है, एक जानने वाला है। अलीम का लफ्ज वैसे तो अल्लाह ताला की सिफात में भी, सिफाती नाम एक अलीम है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो कोई एक जानने वाला, हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला, ठीक है ना, और सब जानने वालों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी जात मौजूद है। ठीक है, तो एक अजीब अल्लाह ताला ने इल्म का यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया, वफौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अली, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो के यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये के दरमियान दरमियान में अल्लाह ताला इंसर्ट करते आ रहे हैं। पीछे भी हमने इस किस्म के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उनके बारे में बात करी है, यहाँ पर भी एक अल्लाह ताला ने प्रिंसिपल बता दिया। खुलासा तफसीर फरमाते हैं कि फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान गल्ला और रवानगी का तैयार कर दिया, रवानगी के लिए कुछ खाना पीना भी तो साथ देना होता है ना, जो कि रास्ते में इंसान खाता है पीता है, बाकी गल्ला जो है वो तो घर जाकर के खोलेंगे। जब हमने उनका सारा सामान वगैरह तैयार कर दिया, खुद या किसी मोतमिद की मारिफत, पानी पीने का बर्तन के वही पैमाना गल्ला देने का भी था, ठीक है ना, नापने का भी वही प्याला इस्तेमाल किया जाता था और पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, या ये कि पहले पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा और अब जो है वो उसको नापने के लिए डेडिकेट कर दिया गया था। तो उसको जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने या तो खुद अपने हाथों से रख दिया या जो है ना अपने किसी एतमाद वाले खादिम के हाथ रखवा दिया, उसी को मोतमिद कहा, एतमाद वाला खादिम, अपने भाई के असबाब में रख दिया। फिर जब ये लाद फांद कर चले, जब सब कुछ लाद फांद कर दिया पूरा जो है वो लोड हो गए, तो फिर उसके बाद वो जब चले ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से पीछे से एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ए काफले वालों, तुम जरूर चोर हो। वो इन तलाश करने वालों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, यानी काफले वाले जो थे वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये भाई थे, तो वो पुकारने वाले की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है जिसकी चोरी का हम पर शुबा हुआ है तुम्हें। उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता, वो गायब है। ठीक है, और इस वक्त जो है ना वो पैमाना जो है वो इंतहाई क्रिटिकल चीज है, हम बादशाह डिपेंड्स अपॉन इट नाउ, यानी जो आने वाले लोग आ रहे हैं उनको देना है और भाई एक ही पैमाना इस्तेमाल करना है, वरना फिर नाइंसाफी हो जाएगी कि दूसरा पैमाना लेकर के आओ। जमाने में कोई फैक्ट्रीज तो नहीं होती थी मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो एक पैमाना दूसरे पैमाने के मुकाबले में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, तो हमें तो वही पैमाना चाहिए ताकि सबके साथ हम एक ही बर्ताव रखें। तो दैट्स व्हाई ऑल द रकस है, रकस क्रिएट करना इतना बड़ा है ना वो कमोशन एक प्याले की खातिर। ठीक है ना भाई, बादशाह सलामत का प्याला गुम हो जाए तो भाई 1,000 प्याले और आ जाएंगे, है ना। इतना माशाल्लाह रेल पेल थी, दौलत की सब कुछ था वहां पर, लेकिन इस एक प्याले के लिए इतना शोर क्यों, क्योंकि बस बस वही एक प्याला हमें चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बादशाही पैमाना नहीं मिलता, वो गायब है, और जो शख्स उसको लाकर हाजिर करे उसको एक बार शुतर गल्ला, एक बार शुतर, शुतर जो है वो उर्दू में भी ऊंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, बात बनी फारसी का लफ्ज है शुतर मुर्ख, जैसे शुतर मुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, वो अगर चेके ऊंट नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा जी मुर्गा जो के ऊंट के जैसा लगता है तो उसका नाम शुतर मुर्ग रख दिया। तो खैर, एक बार शुतर गल्ला बतौर इनाम के खजाने से मिलेगा, और या ये मतलब हो कि अगर खुद चोर भी माल दे दे तो उफ के बाद इनाम पाएगा, यानी उसको उफ माफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ्व फाफू अन्नी, ठीक है ना, वही वाला उफ तो उस दुआ के अंदर है। तो पहले तो उसको हम माफ कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसको इनाम भी दे देंगे, और मैं उसके दिलवाने का जिम्मेदार हूँ। गालबन ये निदा और ये वादा, वादा इनाम बहुक्म यूसुफ अलैहिस्सलाम होगा। इतनी बड़ी यानी वादे कर देना, कोई खादिम तो नहीं अपनी तरफ से वादा कर सकता, जाहिर है अजीज साहब ने जो है वो इतनी अथॉरिटी उसको दी थी, जब भी तो उसने इस किस्म की वादे किए। तो ये लोग कहने लगे कि बखुदा तुमको खूब मालूम है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने, जिसमें चोरी भी दाखिल है, नहीं आए, और हम लोग चोरी करने वाले नहीं है, यानी हमारे ये शेवा नहीं है। इन ढूंढने वाले लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर तुम झूठे निकले और तुम में से किसी पर सरका साबित हो गया तो उस चोर की क्या सजा है। उन्होंने मवाफिक शरीयत शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम के जवाब दिया कि उसकी सजा ये है कि वो जिस शख्स के असबाब में मिले बस वही अपनी सजा है। ठीक है, वो जिस शख्स के असबाब में वो प्याला मिले वही अपनी सजा है, यानी चोरी की एवज में खुद उसकी जात को साहिब माल अपना गुलाम बना ले। हम लोग जालिमों यानी चोरों को ऐसी सजा दिया करते हैं, यानी हमारी शरीयत में यही मसला और अमल है। गर्ज उमूर बाहम ठहरने के बाद असबाब उतरवाया गया, फिर तलाशी के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद या किसी मोतमिद की मारिफत अपने भाई के असबाब के थैले से कबल तलाशी ली, इब्तिदाए अव्वल दूसरे भाई के असबाब के थैलों से। ठीक है, तो उन्होंने इब्तिदा करी तलाश तलाश की जो है ना वो सर्च ऑपरेशन जो लगाया ना उन्होंने, तो वो पहले भाइयों के से शुरू किया, फिर अखीर में उस बर्तन को अपने भाई के असबाब के थैले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर इस तरह बिन्यामीन के रखने की तदबीर फरमाई। मा काना लिया अखुदा, अच्छा लिया अखुदा अखाहु फी दीन मलिकी, दीन अल मलिकी, वजह इस तदबीर की हुई कि यूसुफ अपने भाई को उस बादशाह मिस्र के कानून की रूह से नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसके कानून में कुछ तादीब व जुर्माना था। रुविया अत्तिबरानी अन मुअम्मर अन मुअम्मर व वल अव्वल फी रूह अल मानी, तो अलामा तबरानी जरीर जरिए तभी थे। तो अलामा तबरानी की जो तफसीर है उसके अंदर भी यही है, और रूहुल मानी के अंदर भी, कि याकूब यानी जो बादशाह मिस्र था ना, उसकी शरीयत में ये था कि जरा पिटाई शिटाई करी जाएगी और जुर्माना चोर से लिया जाएगा। मगर ये है कि अल्लाह ताला ही को मंजूर था, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तदबीर आई और उन लोगों के मुंह से ये फतवा निकला। ठीक है ना, देख लें, ठीक है ना, तदबीर भी अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में आई, और उन लोगों के मुंह से जो शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम के तहत जो फतवा निकला ना, ये भी अल्लाह की मर्जी से निकला। ठीक है ना, ये सारा जो है ना, ये सारा का सारा जो थिएटर है ना, ये सारा का सारा जो ड्रामा है, ये सारा का सारा जो खेल है, सब का सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया, सब का सब। ठीक है, ये बात जो है ना, ये बज़ाहिर हमें बड़ी रूटीन सी बात लगती है, बड़ी रूटीन सी बात लगती है, अल्लाह का बनाया हुआ है, हम माशाल्लाह ईमान वाले हैं, अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं वगैरह, है ना, तो हमारे लिए रूटीन बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी भी हम यही कहते हैं, और बाद में भी अल्लाह करे हम यही कह रहे हो। लेकिन यकीन करें, ये इसकी इसकी हकीकत को समझ लेना जो है ना, ये इतना आसान काम नहीं है। और ये जो बात है ना कि सब कुछ ही अल्लाह की तरफ से है, ये अगर किसी के समझ में ना आए ना, और वो इसके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ये उसके ईमान के लिए खत्म। ठीक है ना, ये उसके ईमान के लिए फिर खात्मे का सबब बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये तकदीर है, ये तकदीर वाला है ईमान के अंदर, है ना, एक एक पिलर ऑफ ईमान क्या है, तकदीर। ठीक है ना, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई, वो भी तकदीर, भाइयों ने जवाब दिया कि ये फतवा है हमारे शरीयत में, ये भी तकदीर, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है पहले से, सब कुछ तकदीर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, ये इतना लाइट मत लें, ये तकदीर का मामला है, और तकदीर के मामले में जो है ना, जो जिसको कुछ कीड़ा शुरू हो जाए ना अगर, और वो फिर किसी की बात ना सुने और अपने आप को जो है ना वो ना जोड़े उलमा से, मशाइख से, कुरान मजीद से, तो ये जो तकदीर के ऊपर सोचना है ना, ये उसको ले डूबता है। ठीक है ना, क्योंकि जो इंसानी लॉजिक है ना, ये तकदीर उसके ऊपर फिट नहीं होती। ठीक है, ऐसे हैं, हमें इस किस्म के सवाल भी आते हैं, हमें हमारे पास किस्म के एतराजात भी आते हैं, और काफिर जो है ना वो इसको खूब इस्तेमाल करते हैं ऐसे मुसलमानों को ईमान से महरूम करने के लिए, जो के अपनी मनमर्जी और अपनी अकल के बस अपनी अकल के पुजारी होते हैं, अपनी अकल के ऊपर हर चीज को तोड़ रहे होते हैं ना, और जुड़ नहीं रहे होते निजाम के साथ, ठीक है ना, कुरान के साथ, निजाम के साथ, तो वो फिर कहीं के नहीं रहते। ठीक है, तो बहरहाल ये एक बड़ा संजीदा मसला है, क्योंकि ईमान का खात्मा हो जाता है इससे अगर। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये तदबीर आई और उन लोगों के मुंह से ये फतवा निकला, और इस मजमुए से तदबीर रास्ता आ गई। और चूंकि ये हकीकतन गुलाम बनाना ना था, बल्कि बिन्यामीन की खुशी से सूरत गुलामी की इख्तियार की थी, इसलिए इस्तिरकाके हुर का शुबा लाजिम नहीं आया। ठीक है, क्या मतलब कि बिन्यामीन जो है ना, वो खुद राजी थे इस काम के लिए कि उनको जो है ना वो रख लिया जाए, तो इस वजह से ना ये किसी आजाद आदमी को जो है ना वो उसकी गर्दन फंसा देना, इस्तिरकाक का मतलब क्या कि उसकी जो गर्दन है ना वो बांध देना, गुलाम बना देना। ठीक है, तो ये भी इस सिचुएशन में नहीं था, क्योंकि वो तो उसकी मर्जी के साथ ही ये सब कुछ तय हुआ था। और गो यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े आलिम व आकिल थे, मगर फिर भी हमारी तदबीर सिखाने के मुहताज थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की माशाल्लाह तदबीरें वगैरह तो बयान कर ही रहे हैं ना, पीछे उन्होंने कितना जबरदस्त ख्वाब की ताबीर बताई, और फिर जो है वो सारी की सारी जो है वो प्लानिंग बता दी, है ना, पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी बता दी, सब कुछ बता दी। अल्लाह ताला उनकी तरफ भी बहुत कुछ मंसूब कर रहे हैं, उनको भी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन एक मकाम आया कि जब अल्लाह ताला ने अपना भी तस्करा किया, है ना, कि ये सब कुछ जो वो कर रहे थे ना, ये हमारी ही वजह से कर रहे हैं, हमारी ही दी हुई तदबीरों से, हमारी ही दिए हुए ख्यालात की वजह से वो सारी की सारी अकलमंदी दिखा रहे थे। तो ऐसा मत करना जैसा कि तुम कर जाते हो कि मखलूक की जब तुम तारीफ पे उतरते हो ना, और जब मखलूक के ऊपर तुम फोकस करना शुरू करते हो ना, तो तुम इतना ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो और इतना ज्यादा आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाना शुरू कर देते हो कि तुम खालिक को भूल जाते हो, तुम खालिक को भूल जाते हो और मखलूक में ही गुम हो जाते हो। ठीक है ना? तो अब दूसरी कोई मखलूक तो किस दर्जे की होगी जो अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब और सबसे अजीम तरीन मखलूक है ना, अंबिया अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला के फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम उनके अंदर भी ऐसे गुम हो जाओ कि तुम अल्लाह को भूल जाओ, तुम उनमें भी इतने गुम ना हो जाओ कि तुम खालिक को भूल जाओ। हम तो जो है ना, वो अपने घर के चार बंदों के अंदर ही खालिक को भूल जाते हैं। हम तो अपने उल्लू के यानी चरखे कस्म के जो हमारे हमारे हमने मजाक बनाए हुए हैं ना अपनी जिंदगी के अंदर, हम तो उन्हीं में इतना मगन होते हैं कि हम खालिक को भूल जाते हैं, राइट? और किसी ने बस वही दिल का रोना भड़ास साहब के सामने निकालता रहता है आजस, है ना? किसी ने जो है वो अपने शौहर को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने अपनी बीवी को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने अपनी माँ को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने अपने बाप को खुदा बनाया हुआ है, और किसी ने जो है ना वो अपने उस्ताद को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने अपने शेख को खुदा बनाया हुआ है, राइट? और खुदा किधर गया? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि खुदा नजर नहीं आ रहा होता कहीं भी। सब कुछ है सिवाय खुदा के। दाढ़ियां भी हैं, पगड़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, पजामे भी हैं, अमामे भी हैं, राइट? और बुरके भी हैं, और सब कुछ है, सारे आमाल हैं, सारे जो हैं वो इबादतें हैं, सारे जो हैं वो नफलें हैं, सारे जो हैं वो सब फराइज भी हैं, नफलें भी हैं, सब कुछ है। खुदा था, इसी वजह से झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ खत्म कर दें ना अगर अपनी जिंदगी से, तब जो है ना मुझे आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी जिंदगी में खुदा नजर नहीं आता, राइट? आई विल लूज द अथॉरिटी टू से दिस कि आपको खुदा नजर नहीं आता। मैं क्यों ये बात कहता हूं बार बार, ये फकीर क्यों ये बार बार ये बात कह रहा है? क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इस वजह से ये बात बोली कि खुदा नजर नहीं आता। झूठ खत्म कर दें। इतना बड़ा जो है ना, जो मेरी तरफ से आपके ऊपर इल्जाम आ रहा है, मैं सबको तो नहीं, ऑफ कोर्स सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन जो हैं वो हैं, जो इतना तो इतने तो बेवकूफ नहीं है कि पता ना हो कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? सही है, तो झूठ बोलना खत्म कर दें आप, झूठ बोलना खत्म कर दें प्लीज, ठीक है? इबादतें इतनी करने की जरूरत नहीं है, इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, फराइज पूरा करें और छूट अपनी जिंदगी से खत्म करें, ठीक है ना? बहुत कुछ मिल जाएगा, अल्लाह मिल जाएगा, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा, परसों नहीं मिलेगा तरसों मिल जाएगा देखें, ठीक है ना? अपनी जिंदगी से झूठ खत्म करें, ठीक है? तो दो चार लाइनें वो पढ़ के फिर आपकी जान छोड़ते हैं। तो फरमाते हैं कि बल्कि हम जिसको चाहते हैं इल्म में खास दर्जों तक बढ़ा देते हैं, अपना तस्करा कर रहे हैं ताकि मुझे मत भूलो। भाई अल्लाह ताला चाहते हैं मुझे मत भूलना, और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है, यानी अल्लाह ताला जब मखलूक का इल्म नाकिस ठहरा, कौन सी मखलूक? यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी, राइट? उनका इल्म नाकिस ठहरा और इल्म खालिक कामिल, तो ला महाला हर मखलूक अपने इल्म में और तदबीर में मोहताज होगी खालिक की, इसलिए किदना और इल्ला अय्यशा अल्लाहु कहा गया। हासिल यह है कि जब उनके असबाब से वो बर्तन बरामद हो गया और बिन्यामीन रोक लिए गए, तो वो सब बड़े शर्मिंदा, ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ में तौफीक अता फरमाए। वाकिल दावा अलैहि वसल्लम। सलाम अलैकुम।